एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी पहली मेजबान और आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसने दशकों से लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, एक नया नजरिया दिया है।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। जी हाँ, आज बात हो रही है ऑड्रे लॉर्ड की बहुत ही प्रभावशाली किताब सिस्टर आउटसाइडर की। ये निबंध और भाषणों का एक कलेक्शन है।
और कमाल की बात यह है कि ये आज भी उतनी, बल्कि शायद पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट लगती है ना?
बिल्कुल, पहचान का मुद्दा, समाज में हमारी जगह, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना।
हाँ, और कैसे ये अलग अलग तरह के भेदभाव, जैसे नस्ल है, लिंग है, वर्ग, यौनिकता, ये सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं।
सही काम, ये सब वो बातें हैं जिनसे हम आज भी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में जूझते हैं।
सही। और लॉर्ड की बातें सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, मुझे लगता है ये हमें अपने समाज को, अपनी जिंदगी को और शायद अपनी अंदरूनी ताकत को भी समझने का एक फ्रेमवर्क देती हैं।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं ये वैचारिक यात्रा।
हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं खुद ऑड्रे लॉर्ड की। उन्हें सिर्फ लेखिका कहना तो काफी नहीं होगा, क्यों?
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खुद को कहती थी अश्वेत, लेस्बियन, माँ, योद्धा, कवयित्री। मतलब कितना पावरफुल परिचय है ये।
है ना? ऑड्रे लॉर्ड 1934 से 1992 तक अमेरिकी लेखिका थी, प्रोफेसर, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट।
और उनके माता पिता कैरिबियन अप्रवासी थे, वो कैंसर सर्वाइवर भी थीं। उनकी जिंदगी ही अपने आप में कई संघर्षों और पहचानों का एक संगम थी।
और मुझे लगता है यही बात उन्हें इतना खास बनाती है। उन्होंने समाज के हाशिए पर रहने वाले कई समुदायों के अनुभवों को सिर्फ जिया नहीं, बल्कि उन्हें गहराई से समझा।
बिल्कुल, वो अश्वेत थीं, महिला थीं, लेस्बियन थीं, तो उनका ज्ञान सिर्फ किताबी नहीं था, वो उनके अपने अनुभवों से, उनकी रगों से निकला हुआ ज्ञान था।
हाँ, और एक चीज जो उन्होंने साफ की कि वो अपनी पहचान की किसी एक हिस्से को दूसरे से ज्यादा अहमियत नहीं देंगी।
एग्जैक्टली, उन्होंने कहा कि मेरी ये पूरी जटिल पहचान सारे कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ, यही मेरी असली ताकत है, और यही सोच उनके लेखन और उनकी राजनीति का आधार बनी।
और उनकी भाषा, एक कवयित्री होने के नाते उनके गद्य में भी एक अलग सी लय है, एक भावनात्मक गहराई है जो सीधे असर करती है। तर्क सिर्फ दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचते हैं।
शब्दों की ताकत को वो बखूबी समझती थीं। तो अब आते हैं किताब पर, सिस्टर आउटसाइडर।
हाँ, ये 1976 से 1984 के बीच लिखे गए 15 निबंधों और भाषणों का संग्रह है, तो ये कोई एक सीधी कहानी नहीं है।
सही, इसे आप कह सकते हैं कि ये विचारों का एक नक्षत्र मंडल है। हर निबंध एक अलग सितारे की तरह चमकता है, अपनी रोशनी डालता है।
लेकिन इन सब में एक धागा है ना, एक कॉमन थीम।
बिल्कुल, और वो है उत्पीड़न को समझना और उसका विरोध करने के लिए एक मजबूत वैचारिक, इंटेलेक्चुअल बेस तैयार करना।
और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, मतलब किसके लिए लिख रही थी वो?
देखिए, मुख्य रूप से तो उन आवाजों को मंच देना जिन्हें अक्सर सुना नहीं जाता, खासकर अश्वेत महिलाएं, लेस्बियन और वो सभी जो समाज के बने बनाए ढांचों में खुद को बाहरी या आउटसाइडर महसूस करते हैं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका संदेश हर उस इंसान के लिए है जो न्याय और बराबरी के लिए, मतलब कमिटेड है।
किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो अपने आप में काफी रेडिकल है। लॉर्ड कहती हैं कि सच्ची आजादी तभी मिलेगी जब हम अपनी पूरी कॉम्प्लेक्स पहचान को अपनाएंगे बिना किसी शर्म या डर के।
हाँ, और कमाल की बात यह है कि जिन भिन्नताओं का इस्तेमाल समाज हमें बांटने और दबाने के लिए करता है, जैसे हमारी नस्ल, लिंग, यौनिकता, वर्ग, उम्र, क्षमता, लॉर्ड कहती हैं कि वही भिन्नताएं हमारी क्रिएटिव एनर्जी और शक्ति का सबसे बड़ा सोर्स है।
ये तो पूरी तरह से सोच को पलट देने वाली बात
है ना? और यही पर उनका वो सबसे मशहूर कोट आता है, द मास्टर्स टूल्स विल नेवर डिसमेंटल द मास्टर्स हाउस।
मालिक के औजार कभी मालिक के घर को नहीं तोड़ सकते।
हाँ, यानी आप उत्पीड़न करने वालों के तरीके इस्तेमाल करके उत्पीड़न की व्यवस्था को खत्म नहीं कर सकते, आपको तरीके भी बदलने होंगे।
और इसमें व्यक्तिगत बदलाव बहुत जरूरी है, जैसे अपनी आवाज ढूंढना, सच बोलना।
बिल्कुल, अपनी पहचान के सभी हिस्सों को जोड़ना, अपनी भावनाओं को समझना और इस्तेमाल करना, ये सिर्फ पर्सनल ग्रोथ नहीं है,
ये पॉलिटिकल एक्शन है, सामूहिक मुक्ति के लिए जरूरी है।
एग्जैक्टली, तो चलें अब कुछ खास निबंधों पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। हर एक अपने आप में एक पूरा विचार समेटे हुए हैं।
हाँ जरूर, शुरुआत करते हैं कविता कोई विलासिता नहीं है, पोएट्री इज नॉट अ लग्जरी से। आमतौर पर तो हम कविता को एक शौक की तरह देखते हैं, है ना?
हाँ, या मनोरंजन, खासकर मुश्किल वक्त में लगता है कि कविता की क्या जरूरत। पर लॉर्ड कहती है नहीं, खासकर हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए ये सांस लेने जैसी जरूरत है।
दिलचस्प, जरूरत कैसे?
वो तर्क देती हैं कि कविता वो भाषा है जो उन भावनाओं, उन अनुभवों को नाम देती है जिनके लिए हमारे पास रोज के शब्द नहीं होते। ये हमारे अंदर के अंधेरे कोनों को रोशन करती है, सपनों को शक्ल देती है।
अच्छा,
और जब आप अपनी सच्चाई को शब्द दे पाते हैं, तभी तो आप उसे बदलने के लिए पहला कदम उठाते हैं ना। इसीलिए ये क्रांतिकारी कार्रवाई की नींव है। ये सिर्फ शौक नहीं, जिंदा रहने का एक औजार है।
वाह, कला को इस तरह से देखना, ये तो सच में नजरिया बदल देता है।
अच्छा, अगला निबंध है खामोशी को भाषा और कर्म में बदलना, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइलेंस इंटू लैंग्वेज एंड एक्शन। ये उन्होंने तब लिखा था जब वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी।
हाँ, और उस अनुभव ने उन्हें एक गहरी सच्चाई का एहसास कराया, और वो ये कि चुप रहना हमें बचाता नहीं है। हमें लगता है कि खामोश रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, झगड़े से बचेंगे,
हाँ,
पर लॉट कहती हैं कि हमारी खामोशी असल में हमें अंदर से खाती है और अन्याय को बढ़ने का मौका देती है।
तो संदेश साफ है, बोलो, सच बोलो, अपनी आवाज उठाओ भले ही वो डरावना लगे।
बिल्कुल, ये एक पॉलिटिकल एक्ट है। जब हम सच बोलते हैं तो हम सिर्फ खुद को आजाद नहीं करते बल्कि दूसरों को भी हिम्मत देते हैं, हम एक कम्युनिटी बनाते हैं। खामोशी तो अक्सर उत्पीड़क की ताकत बढ़ाती है।
भले ही आवाज कांप रही हो।
हाँ, अब आते हैं एक ऐसे निबंध पर जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, कामुकता का उपयोग कामुकता शक्ति के रूप में।
यूजेस ऑफ द इरोटिक एस पावर।
हाँ, इरोटिक शब्द सुनते ही लोग सिर्फ सेक्स के बारे में सोचने लगते हैं।
सही कहा,
लेकिन लॉर्ड इसे बहुत बहुत बड़ा अर्थ देती हैं।
क्या मतलब है उनका इरोटिक से? देखिए, उनके लिए ये सिर्फ शारीरिक सुख नहीं है, ये जीवन की वो गहरी क्रिएटिव एनर्जी है जो खासकर महिलाओं के अंदर मौजूद है। ये गहरे ज्ञान, इंटेंस इमोशंस और जुड़ाव की शक्ति का सोर्स है।
अच्छा, जैसे?
जैसे वो एहसास जब हम किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं, या प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, या किसी रिश्ते में गहराई महसूस करते हैं। ये जीने का जुनून है, वो लाइफ फोर्स।
और लॉर्ड कहती हैं कि पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता ने इस शक्ति को दबा दिया है, इसे सिर्फ सेक्स तक सीमित कर दिया है।
हाँ, इसे कमजोर कर दिया है, तुच्छ बना दिया है। लॉर्ड का कहना है कि जब महिलाएं इस इरोटिक शक्ति को पहचानती हैं और अपनी जिंदगी के हर हिस्से में अपनाती हैं, तो उन्हें न सिर्फ सच्ची खुशी और सेल्फ नॉलेज मिलती है
बल्कि बदलाव लाने की ताकत भी मिलती है।
एग्जैक्टली, ये पर्सनल और पॉलिटिकल दोनों तरह की शक्ति का स्रोत है।
ये तो शक्ति की पूरी परिभाषा ही बदल रहा है। अच्छा, अब उस निबंध पर आते हैं जिसका जिक्र पहले भी हुआ, मालिक के औजार कभी मालिक के घर को नहीं तोड़ सकते। ये शायद उनका सबसे फेमस कोट है।
हाँ, और ये काफी तीखा भी है। ये उस समय के मेनस्ट्रीम फेमिनिस्ट मूवमेंट की आलोचना थी
जो ज्यादातर श्वेत मध्यम वर्गीय महिलाओं पर केंद्रित था।
बिल्कुल, और जो अश्वेत, लेस्बियन या गरीब महिलाओं के अनुभवों को अक्सर नजरअंदाज कर देता था। तो यहां मालिक का घर है पितृसत्ता, नस्लवाद, वर्गभेद जैसी दमनकारी व्यवस्थाएं।
और औजार क्या है फिर?
औजार हैं वही तरीके जिनसे ये व्यवस्था चलती है, लोगों को बाहर करना, ऊंच नीच बनाना, कंपटीशन करवाना, मतभेदों को खत्म करने की कोशिश करना।
अच्छा,
तो लॉर्ड कह रही हैं कि अगर मुक्ति के आंदोलन खुद ही इन औजारों का इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए फेमिनिस्ट मूवमेंट में ही नस्लवाद हो या अंदर ही ऊंच नीच हो, तो वो सच्ची आजादी कभी नहीं ला पाएगा।
वो सिर्फ मालिक के घर की मरम्मत कर रहा होगा, उसे तोड़ नहीं रहा होगा।
बिल्कुल, यानी बदलाव के लिए सिर्फ लक्ष्य नहीं, तरीके भी नए चाहिए। भिन्नता को समस्या नहीं, ताकत समझना होगा।
और ये बात तो हर सामाजिक आंदोलन पर लागू होती है।
सही, इसी से जुड़ा है अगला निबंध, उम्र, नस्ल, वर्ग और लिंग। महिलाएं भिन्नता को फिर से परिभाषित करती हैं। यहां वो इंटरसेक्शनैलिटी की नींव रखती हैं।
इंटरसेक्शनैलिटी
यानी ये समझना कि हमारी पहचान के अलग अलग पहलू, जैसे भारत में किसी की जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति, क्षेत्र, ये सब अलग अलग नहीं है।
हाँ, ये सब एक दूसरे से गुंथे हुए हैं और मिलकर हमारे अनुभवों को एक खास शक्ल देते हैं।
लॉर्ड बताती हैं कि समाज हमें भिन्नता यानी डिफरेंस से डील करने के तीन ही तरीके सिखाता है, या तो अनदेखा करो,
या अगर वो ताकतवर है तो उसकी नकल करो, या अगर कमज़ोर है तो उसे ख़त्म कर दो।
लेकिन लॉर्ड कहती हैं कि ये नज़रिया गलत है।
तो फिर सही क्या है? वो कहती हैं कि हमें भिन्नता को आवश्यक ध्रुवों के भंडार की तरह देखना चाहिए। जैसे बिजली के दो अलग पोल के बीच स्पार्क होता है, वैसे ही अलग अलग नज़रियों और अनुभवों के बीच रचनात्मकता और नई ऊर्जा पैदा हो सकती है। वो मिथिकीय मानक, मिथिकियल नॉर्म की भी बात करती हैं, समाज का वो काल्पनिक आदर्श व्यक्ति जिसके पैमाने पर बाकी सबको तोला जाता है, वो इस मानक को ही चैलेंज करती हैं।
ये भिन्नता को देखने का कितना पॉजिटिव तरीका है। अच्छा, अब बात करते हैं मैरी डेली के नाम एक खुला पत्र की। इसमें वो सिर्फ थ्योरी नहीं बता रही।
नहीं, इसमें वो एक्शन में है। ये बहुत पर्सनल और पावरफुल लेटर है। मैरी डेली उस वक्त की एक बड़ी श्वेत नारीवादी विचारक थी,
और लॉर्ड उनकी किताब गायनेकोलॉजी की आलोचना करती हैं।
हाँ, वो कहती हैं कि डेली ने अपनी किताब में अश्वेत महिलाओं और दूसरी गैर यूरोपियन संस्कृतियों की कहानियों का इस्तेमाल तो किया,
लेकिन उन्हें और उनके अनुभवों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया। उनकी आवाज को जैसे मिटा दिया गया, सिर्फ अपनी बात कहने के लिए इस्तेमाल किया गया।
तो ये एक तरह से श्वेत नारीवाद की सीमाओं का उदाहरण बन गया कि कैसे अच्छे इरादों वाले आंदोलनों में भी एक्सक्लूजन हो सकता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि सिस्टरहुड या बहनचारे का दावा तब तक खोखला है जब तक वो सभी बहनों की आवाज़ों को बराबर सम्मान ना दे।
और आखिर में एक और ज़रूरी निबंध, क्रोध का उपयोग, नस्लवाद पर प्रतिक्रिया करती महिलाएं। गुस्सा, खासकर महिलाओं का गुस्सा, अक्सर नेगेटिव माना जाता है।
हाँ, उसे दबाने को कहा जाता है, लेकिन लॉर्ड इसे एक ज़रूरी बल्कि एक पॉजिटिव इमोशन मानती हैं, खासकर अन्याय के खिलाफ।
खासकर नस्लवाद के खिलाफ अश्वेत महिलाओं के गुस्से को वो एक जायज और शक्तिशाली प्रतिक्रिया के रूप में देखती हैं। वो कहती हैं कि इस गुस्से को दबाने की मांग करना तो उत्पीड़ितों से ये कहना है कि वे अपने उत्पीड़न में सहयोग करें।
पर क्या गुस्से और नफरत में कोई फर्क है? लॉर्ड इसमें कैसे भेद करती हैं?
दिए डिस्ट्रक्शन, जबकि लॉर्ड के लिए गुस्सा अन्याय और विकृतियों पर दुख और दर्द का इजहार है।
अच्छा,
ये बदलाव की मांग करता है, ये चीजों को साफ देखने में मदद करता है और एक्शन के लिए एनर्जी देता है। ये एक सिग्नल है कि कुछ गलत है जिसे ठीक करना है।
तो इसे सुना जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए
और बदलाव के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
इन सभी निबंधों को समझने के बाद अगर कुछ मुख्य संदेश निकालने हो तो क्या होंगे? मुझे लगता है पहला और सबसे अहम है इंटरसेक्शनैलिटी और भिन्नता को अपनाना।
हाँ, ये समझना कि उत्पीड़न के अलग अलग रूप, जातिवाद, लिंग भेद, वर्ग भेद, होमोफोबिया, ये सब अलग थलग नहीं है।
ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को मजबूत करते हैं।
भारत जैसे देश में तो ये रोज की सच्चाई है ना, जहाँ किसी की जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, क्षेत्र, भाषा सब मिलकर उसकी जिंदगी के अनुभव तय करते हैं। बिल्कुल, और लॉर्ड हमें सिखाती हैं कि इन भिन्नताओं को मिटाने की कोशिश करने के बजाय उन्हें समझना और उनका सम्मान करना ही सच्ची एकता ला सकता है। भिन्नता कमजोरी नहीं, ताकत है।
दूसरा बड़ा संदेश है खामोशी को तोड़ना, आवाज उठाना, अपनी सच्चाई बोलना, खासकर तब जब आपको चुप रहने को कहा जाए। ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और एक राजनैतिक कदम भी।
चुप रहने से हम सुरक्षित नहीं रहते, बल्कि अन्याय को बढ़ने में मदद करते हैं। सोचिए हमारे आसपास कितनी बार लोग अन्याय देखकर भी चुप रह जाते हैं, डर से या ये सोचकर कि क्या फर्क पड़ेगा।
लॉर्ड कहती हैं फर्क पड़ेगा, बोलो।
तीसरा, शक्ति की परिभाषा बदलना। पारंपरिक सोच है शक्ति यानी दूसरों पर कंट्रोल।
हाँ, पावर ओवर।
पावर ओवर, लॉर्ड हमें अंदरूनी शक्ति, पावर विद इन पर ध्यान देने को कहती हैं। जैसे इरोटिक, वो जीवन जीने का जुनून, रचनात्मकता, या गुस्सा अन्याय के खिलाफ वो स्पष्टता और ऊर्जा।
ये शक्ति दूसरों पर हावी होने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जानने और प्रतिरोध करने के लिए है। चौथा संदेश जो आज भी बहुत जरूरी है वो है बहिष्कृत करने वाले आंदोलनों की आलोचना।
हाँ, कोई भी आंदोलन जो न्याय के लिए लड़ रहा है उसे खुद अपने अंदर देखना होगा कि कहीं वो उन्हीं दमनकारी तरीकों को तो नहीं दोहरा रहा।
क्या वो सबसे हाशिए पर खड़े लोगों को केंद्र में रख रहा है? क्या वो सच में इंक्लूसिव है? ये सवाल हर तरह के आंदोलनों पर लागू होता है।
और पांचवा, कविता और भावनाओं को राजनीतिक औजार मानना।
बिल्कुल, तर्क जरूरी है, पर लॉर्ड याद दिलाती हैं कि हमारी भावनाएं, गुस्सा, प्यार, डर, खुशी और उन्हें व्यक्त करने के तरीके, जैसे कला और कविता,
ये सिर्फ पर्सनल चीजें नहीं है। ये हमें दुनिया को महसूस करने, एक बेहतर भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए लड़ने की ताकत देते हैं।
इन्हें कमजोरी नहीं, ताकत समझना चाहिए। ये किताब वाकई ऐसी पावरफुल लाइनों से भरी है जो रुक कर सोचने पर मजबूर करती हैं।
हाँ, कुछ यादगार पंक्तियाँ जो इन विचारों का सार हैं, उन पर बात करें।
जरूर। सबसे मशहूर तो वही है, मालिक के औजार कभी मालिक के घर को नहीं तोड़ सकते।
मतलब साफ है, आप अन्याय करने वालों के तरीके अपनाकर अन्याय खत्म नहीं कर सकते। आपको जड़ से अलग सोचना होगा।
फिर तुम्हारी खामोशी तुम्हें नहीं बचाएगी।
सीधी चेतावनी है, चुप रहना शायद आसान लगे पर लंबे समय में ये आपको कमजोर करता है। आवाज उठाना जरूरी है।
और कविता पर उनकी वो बात, कविता कोई विलासिता नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
ये कला को हाशिए पर पड़े लोगों के लिए जिंदा रहने, अपनी पहचान बनाने और प्रतिरोध करने का एक बुनियादी औजार बना देता है।
और भिन्नता पर ये कमाल का विचार, भिन्नता को सिर्फ बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए बल्कि उसे आवश्यक ध्रुवों के एक ऐसे कोश के रूप में देखा जाना चाहिए जिसके बीच हमारी रचनात्मकता एक द्वंद्ववाद की तरह चमक सकती है।
मतलब मतभेदों से डरना नहीं है, उन्हें मिटाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसी जगह की तरह देखना है जहां अलग अलग विचार टकराकर कुछ नया और बेहतर बना सकते हैं। टॉलरेंस काफी नहीं है, सम्मान और रचनात्मक उपयोग जरूरी है।
ये विचार सुनने में बहुत गहरे लगते हैं, पर सवाल ये है कि हम इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं?
हाँ बिल्कुल है। मुझे लगता है पहला कदम तो पर्सनल लेवल पे इंटीग्रेशन का है, अपनी पहचान के सभी हिस्सों को स्वीकार करना। हमारी जाति, लिंग, यौनिकता, आर्थिक स्थिति, हमारी क्षमताएं, कमजोरियाँ, सब कुछ।
समाज हमें अक्सर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुखौटे पहनने को मजबूर करता है। लॉर्ड हमें उकसाती हैं कि हम जहाँ तक हो सकें अपने पूरे स्व होल सेल्फ के साथ जिएं।
ये आसान नहीं है पर शायद ज्यादा सच्चा रास्ता है।
दूसरा, रिश्तों और समुदाय में भिन्नता का सम्मान करना। जब हम ऐसे लोगों से मिले जो हमसे अलग हैं सोच में, पृष्ठभूमि में, तो डरने या उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उन्हें सुनने और समझने की कोशिश करें।
हाँ, जैसे अपने ऑफिस में या पड़ोस में जहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं, हम कैसे बेहतर संवाद कर सकते हैं। अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना भी इसी का हिस्सा है।
तीसरा, सामाजिक न्याय के प्रयासों का ईमानदारी से मूल्यांकन करना। हम जिन भी ग्रुप्स या मूवमेंट्स का समर्थन करते हैं उन पर मालिक के औजार वाली आलोचना लागू करके देखें, क्या वो सच में इंक्लूसिव हैं?
क्या वे सबसे कमजोर आवाजों को सुन रहे हैं? कहीं वे अंदर ही अंदर सत्ता का वही पुराना खेल तो नहीं खेल रहे?
ये सेल्फ क्रिटिसिज्म किसी भी आंदोलन को मजबूत ही बनाता है।
और चौथा, अपनी भावनाओं को रचनात्मक रूप से इस्तेमाल करना। जब अन्याय पर गुस्सा आए तो उसे पी जाने के बजाय रुक कर सोचें, ये गुस्सा क्या बता रहा है, किस बदलाव की मांग कर रहा है,
इसे एक्शन के लिए फ्यूल कैसे बना सकते हैं। इसी तरह अपनी खुशी, अपने प्रेम, अपनी क्रिएटिव एनर्जी को भी पहचानें और उन्हें ताकत के सोर्स की तरह इस्तेमाल करें।
इस पूरी चर्चा के बाद आपके लिए सबसे खास बात या सबसे बड़ा टेक अवे क्या रहा?
मेरे लिए सबसे क्रांतिकारी विचार यही है कि भिन्नता, जिसे हम अक्सर एक प्रॉब्लम या रुकावट मानते हैं, वो असल में ताकत और रचनात्मकता का खजाना है। ये पूरी सोच को पलट देता है।
बिल्कुल, अगर हम इसे सच में अपना लें तो हमारे रिश्ते, हमारा समाज, हमारे आंदोलन कितने बदल सकते हैं।
सही कहा। और मेरे लिए सबसे प्रभावशाली है वो गहरा कनेक्शन जो लॉर्ड व्यक्तिगत सच्चाई, मतलब अपनी आवाज पाना, खुद को पूरी तरह स्वीकारना और सामूहिक राजनीतिक बदलाव की संभावना के बीच बनाती हैं।
हाँ, वो व्यक्तिगत ही राजनीतिक है वाली बात।
हाँ, लॉर्ड उसे एक नई गहराई देती हैं। यह हमें बताता है कि दुनिया को बदलने की शुरुआत खुद को बदलने और अपनी सच्चाई बोलने से होती है। ये बहुत एम्पावरिंग लगता है।
बिल्कुल, सिस्टर आउटसाइडर सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, ये हमें हिम्मत, ईमानदारी और अपनी पूरी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ जीने का
और अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके मुक्ति की राह पर चलने का एक तरह से न्योता देती है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए खत्तर फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।